ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाबा की यादों में बैठे हुए थे। बहुत सुंदर गीत बज रहा था। हम किनारे आ गए, तेरी यादों के सहारे आ गए। आप सभी विशेष भट्टी के लिए आए हैं तो सब किनारों को छोड़कर हैं, ज्ञान सागर के किनारे पर, ज्ञान सरोवर में ज्ञान की डुबकी लगाने के लिए आप सभी यहाँ आ रहे हैं। और जब ज्ञान सागर के अंदर डुबकी लगाते हैं तो डुबकी लगाने से क्या होता है? कहते हैं सागर में डुबकी लगाओ और डुबकी लगाकर उसकी गहराई में जाओ तो उसके अंदर से रतन निकलते हैं, रतन मिलते हैं। जितनी गहराई में जाते हैं उतने रतन मिलते हैं। वैसे भी ज्ञान सागर बाबा की, ज्ञान की गहराई में हम बाबा के बच्चे जितना जाते हैं, याद की गहराई में जितना जाते हैं तो उतने ही हमें अनेक प्रकार के रत्न मिलते हैं। ज्ञान की गहराई में जाने से ज्ञान की अनेक पॉइंट्स क्लियर होती हैं। और जब योग की गहराई में जाते हैं तो योग की गहराई में जाने से अनेक प्रकार के अनुभव के रत्न मिलते हैं। और जिन अनुभव के रत्नों से प्यारा बाबा हम बच्चों को अनुभवी बना रहा है, तो आप सभी जो ज्ञान सागर में, ज्ञान सरोवर में आए, ज्ञान सागर में डुबकी लगाने के लिए, तो विशेष डुबकी लगाकर अनेक अनुभव लेकर के जाएंगे। आज आपकी भट्टी का पहला दिन है, तो बाबा ने भी आज भट्टी याद की। सवेरे की मुरली सभी ने सुनी होगी। बाबा ने आज किसको याद किया? भट्टी को याद किया। बाबा ने कहा बच्चे भट्टी क्या करती है, भट्टी करने के लिए हम क्यों आते हैं? ये भट्टी शब्द बाबा ने हम बच्चों को दिया है। वैसे तो भट्टी में डालते हैं जो अग्नि होती है उसमें डालते हैं, तो अग्नि में डालने से जो भी चीज डाली जाती है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही हम सभी भी ये ज्ञान की भट्टी में पढ़ते हैं, योग की भट्टी में पढ़ते हैं, तो विशेष अनेक प्रकार के अनुभव हमें मिलते हैं। और उन अनुभवों के आधार से ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो बाबा ने आज जो भट्टी याद की तो उसमें भी बाबा ने कहा कि देखो, कोई भी जो अज्ञानी आत्माएं आती हैं उन अज्ञानियों को समझाने के लिए, जिनको भगवान का परिचय नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको परिचय देने के लिए, भगवान के बारे में समझाने के लिए, ज्ञान के बारे में समझाने के लिए बाबा ने कहा उनको 7 रोज की भट्टी में बिठा दो। तो 7 रोज की भट्टी में वैसे भी कोई आते हैं नए तो उनको हम 7 दिन का कोर्स कराते हैं, वो भट्टी है। और बाबा ने जो हम बच्चों के लिए भी कहा कि हम बच्चे भी अपने को भट्टी में डालें। भट्टी में क्यों डालें? भट्टी से क्या फायदा होगा? जैसे वो 7 दिन में सब नॉलेज समझ लेते हैं, बाप को पहचान लेते हैं, सृष्टि के आदमध्यंत को जान लेते हैं। बाबा ने आज कहा ना लीला, तो सृष्टि के आदमध्यंत की जो लीला है तो उसको भी जान लेते हैं। तो तुम बच्चे भी भट्टी में किस लिए आते हो? भट्टी क्यों करते हो? क्योंकि भट्टी के अंदर आने का हम सभी का यही लक्ष्य होता है कि विशेष अनेका अनेक प्रकार की हम नए अनुभव करें और उन अनुभवों से अपने जीवन में अनेका अनेक की प्राप्तियां करते रहें। क्योंकि मनुष्य जो जीवन में रहता है तो जीवन में रहते रहते अनेक प्रकार के समस्याएं कहें, परिस्थितियां कहें, क्वेश्चन कहें आते हैं और उनके लिए मनुष्य को मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। और मार्गदर्शन भी मिल जाता है तो कोई भी बात की नॉलेज ही जरूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ जब उसकी गहराई में जाते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, तब ही अनुभव को पा सकते हैं या जो परिस्थिति है उसको पार कर सकते हैं। तो हमारी योग की जो तपस्या है, जो भट्टी है, ये भट्टी हम यही कहें कि अनेक प्रकार के हमें मन इच्छित फल देती है। आज कोई भी इच्छा है तो उसको प्राप्त करने के लिए अगर हम बाबा की याद में रहते, भट्टी माना ही याद है, जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतना अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियों से हम पार हो सकते हैं। और हरेक ब्राह्मण इस बात का अनुभव करते हैं, कैसे भी परिस्थिति आई, चाहे तन की आती है, चाहे मन की आती है, चाहे धन की आती है, चाहे प्रकृति की आती है, क्योंकि परिस्थितियां पेपर तो बहुत आते हैं, है? तन का पेपर भी आता है, मन का पेपर भी आता है, धन का पेपर भी आता है, संबंधों का पेपर भी आता है, प्रकृति का पेपर भी आता है, समाज का पेपर भी आता है, अनेक प्रकार के आते हैं। उन सब में से हमको जो मार्गदर्शन मिलता है, वो मार्गदर्शन को प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए हमें तपस्या बहुत जरूरी है। तो आज बाबा की मुरली हम जब सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो बाबा ने भट्टी याद की। तो भट्टी जो है हमारे योग की जो करामात है वो क्या है? तो आज मैंने एक उदाहरण दादी का सुनाया था क्लास में कि योग हमारा क्या कमाल करता है। तो एक बार दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में हमारा बहुत बड़ा मेला लगना था और लगा रहे थे, उसमें पूरे भारतवर्ष के भाई बहने सब वहाँ पहुँचे हुए थे और बहुत सुंदर मेला था, पहला मेला था। रामलीला ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है दिल्ली का। तो जब मेले की तैयारी हो रही थी तो उद्घाटन के 2 दिन पहले वहाँ एक प्रॉब्लम आ गया। तो क्या प्रॉब्लम आया? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते थे तो वहाँ रामलीला ग्राउंड में ही होते थे। तो वहाँ कई रशिया का प्राइम मिनिस्टर आने वाला था तो उसका कोई प्रोग्राम रखना था, तो वो कहा कि भाई रामलीला ग्राउंड खाली कराया जाए। अभी मेले के 2 ही दिन बाकी थे और 2 दिन मेले के बाकी होने पर कहा कि भाई आप लोग खाली कर दो, नोटिस आ गया। दादी जी के पास बात आई तो दादी जी ने कहा अच्छा सभी योग करो, कि कैसे भी करके उनकी बुद्धि का परिवर्तन हो और हमें हमारा मेला कैंसल ना करना पड़े। इतनी सब तैयारी हो गई पूरे भारत वर्ष से, कितने भाई बहने वहां 1000 के करीब भाई बहने पहुंचे हुए थे सेवा में, और 2 दिन बाकी है, और अब 2 दिन में हम कैसे चेंज कर दूसरी जगह पर चेंज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को भी कुछ कह नहीं सकते, प्रोग्राम भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए। तो दादी जी के पास जब बात आई तो दादी जी ने कहा सब योग अखंड तपस्या करो, सब प्रोग्राम कंट्रैक्शन का काम बंद करा दिया दादी ने, और सबको कहा तपस्या करो। तो वहां ग्राउंड में ही सब बैठ करके योग कर रहे थे, अखंड योग भट्टी रखी। तो योग चल रहा था, और योग चलते में ही गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आए, और आकर के उन्होंने देखा, कहा कि इनका ग्राउंड कितना बड़ा, कैसे सजाया है, क्या किया है, वो सब इंक्वायरी करने के लिए आए थे। जब सभी को देखा इतने सारे भाई बहने योग में बैठे हैं, और सबसे पहला देवी का स्टॉल था, तो देवी की मूर्ति भी वहां लग गई थी। तो जैसे ही उन लोगों ने देखा और जाकर के गवर्नमेंट को रिपोर्ट की, उस समय इंदिरा गांधी थे, उनको रिपोर्ट की कि ऐसे ऐसे वहां है, और कहा कि अगर हम इनका प्रोग्राम कैंसिल कर, उन्होंने उस रीति से लिया, अगर इनका प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे और इतने 1000 लोग हैं, अगर ये हड़ताल पर बैठ गए वहां, तो हमारा जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम होगा वो खराब हो जाएगा। उन्होंने उस रीति से देखा, और हम तो तपस्या में बैठे थे। तो बाबा ने देखो उसको कैसी प्रेरणा दी, तो वो देख करके गए और प्रोग्राम, फिर उन लोगों ने कहा अच्छा आपका जैसे प्रोग्राम है आप सभी यहाँ पर कीजिए, और उनका प्रोग्राम दूसरी जगह पर रख दिया। तो देखो हमारे योग की कमाल। तो हमारी दादी जी जो थी वो हमेशा कोई भी कैसी भी परिस्थिति आती थी, कैसा भी पेपर आता था, कोई भी समस्या आती थी, तो हमेशा दादी हमको कहा करती थी कि आप सभी योग करो, है? और जितना हम योग करते हैं उतना क्या होता है, वो जो भी पेपर आया, समस्या आई, और वो सब चला जाता है। तो योग हम बच्चों के लिए, बाबा के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। तो बाबा ने आज उस भट्टी को याद किया, तो मद भट्टी जो है वो हमको मन इच्छित फल देने वाली है। आप सबने भी, हरेक ने अपने जीवन के अंदर बहुत अनुभव किए होंगे कि हमारा योग क्या क्या कमाल करता है। एक मिसाल तो ये बताया, आज योग जो है, बाबा ने ये भी याद किया कि योग हमारी निरोगी काया बनाता है, तो निरोगी काया भी हमारी योग से बनेगी। तो निरोगी काया क्या सत्युग में बनेगी या यहां बनेगी, यहां कैसे बनेगी निरोगी काया? ये 5 तत्वों का शरीर है, और 5 तत्व कौन से हैं? तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान तत्वों का शरीर भी तो तमो प्रधान ही होगा ना। लेकिन हमारा योग जो है वो कमाल करता है। मैं उसका भी एक मिसाल देती हूं। हमारे पास एक माता थी, बहुत अनपढ़ माता, जिसको कोई ज्ञान नहीं, मतलब बाबा बाबा करती थी, पढ़ना भी नहीं आता था, मुरली भी नहीं पढ़ती थी, बाबा को याद करती थी। उसको अन्न नली का कैंसर हो गया, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है, खाना भी नहीं खा सकती थी, बस कहा भी जितने दिन ये जिंदा रह सके उसको रखो, बाकी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। मैं उससे मिलने गई, और जाकर के उससे मिली, बाबा की याद कराई, दृष्टि दी, और मैंने कहा बाबा याद है? तो बोला दीदी बाबा ही तो याद है। मैंने कहा बाबा तो आपका अविनाशी सर्जन है। आज डॉक्टर भले बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन बाबा हमारा अविनाशी सर्जन है, वो आपकी दवाई करेगा। आप बाबा को बोलो, बाबा मेरा तू ही मेरी दवाई करना, तू ही मेरा सर्जन है। तो वो तो भोली थी बिचारी, है बस उसकी दिल में बैठ गए बड़े प्यार से बाबा को, रोज बोलती बाबा तू मेरा सर्जन, तू ही मेरी दवाई कर, बाबा तू मेरा सर्जन, तू ही मेरी दवाई कर। आप नहीं मानेंगे, उस माता का कैंसर खत्म हो गया। आज वो इतनी अच्छी हो गई है कि बाबा के घर में रोज सेवा करने आती है। आप सोचो, जिस डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है और उसने कोई दवाई नहीं की, सिर्फ योग किया और बाबा को बोला बाबा तू मेरा सर्जन, तू ही मेरी दवाई कर, तो हमारे योग के अंदर इतनी ताकत है। योग के सिवाय तो और कुछ है ही नहीं। बाबा ने हमको हथियार ही योग दिया है, इसीलिए तो कहा भट्टी। भट्टी माना क्या, कोई भी चीज भट्टी के अंदर डाली जाती है तो क्या होके निकलती है, हाँ परिवर्तन होके निकलती है ना। सोने को प्योर करना है तो भट्टी में डालते हैं, लोहे को भी पिघलाना होता है तो भी भट्टी में डालते हैं। तो हमारे भी जो भी पुराने विकर्म हैं उनको भस्म करने के लिए हमारे पास ये योग की ताकत है, योग की भट्टी है। इसीलिए भट्टी नाम दिया है कि भाई भट्टी में पड़ने से क्या होगा, सब रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो आप सभी भी भट्टी करने के लिए आए हैं, है? इसलिए बाबा ने आज भट्टी याद की। अच्छा, फिर तो आज हमारा जो टॉपिक है साक्षी दृष्टा, है? बाबा ने हम बच्चों को ये बहुत अच्छी स्थिति दी है, साक्षी और साथी। हमें साक्षी दृष्टा रहना है और बाप को साथी बनाना है। तो बाबा हमारा साथी है और साथी को साथ रख करके हमें जो भी कर्म करने हैं वो साक्षी हो करके करने हैं, क्योंकि कर्म के बिना तो आत्मा रह नहीं सकती है। जब तक आत्मा को ये शरीर मिला है तब तक हमें कर्म जरूर करना है, और कर्म करते हुए है? हम उसमें कैसे न्यारे रहें, बाबा ने हम बच्चों को ये विधि ही सिखाई है। और ये भी कहा जाता है जितना न्यारा उतना प्यारा, प्यारा बनने के लिए न्यारा बनना पड़ता है, साक्षी बनने के लिए बाप को साथी बनाना पड़ता है। जब बाबा हमारा साथी है, उस साथी को साथ रख करके हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म भी श्रेष्ठ बनता है, और उस कर्म के हम बंधन में नहीं आते, क्योंकि बाबा ने हम सभी को कर्म योगी बनाया है, है? हमारा योग सिर्फ योग नहीं है, लेकिन हमारा है कर्म योग। तो कर्म करते हुए हमें योग करना है, सिर्फ योग नहीं। सिर्फ योग कितना समय करेंगे, अभी बाबा की एक मुरली थी कुछ समय पहले की, उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा था कि बच्चे योग तुम कितना समय बैठ के लगाएंगे, अगर कर्म ना हो तो तुम्हारा योग भी नहीं हो सकता है, है? तो कर्म और योग, तो कर्म और योग का अगर बैलेंस है तो कर्म ही हमें योग कराएगा। तो कर्म योग करते हुए, योग करते हुए अगर हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारे क्या बन जाते हैं? श्रेष्ठ बन जाते हैं। और श्रेष्ठ कर्म जितना हम करते जाते हैं उतना हम आत्मा श्रेष्ठ बनती जाए। तो श्रेष्ठ कर्म सबसे बड़ा कौन सा है कि जो भी हम कर्म करें उस कर्म को हम साक्षी होकर के करें। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म करते करते हम सभी क्या होता है, कर्म के भान में आ जाते हैं। कर्म मैं करता हूं है? तो जब मैंपन आता है, ओम शांति, तो हम जो भी कर्म करते हैं तो कर्म को साक्षी होकर के अगर हम करेंगे तो साक्षी होकर कर्म करने से हमेशा हमारा कर्म जो होगा वो श्रेष्ठ होगा। क्योंकि कर्म के बिना तो हम आत्माएं रह नहीं सकती हैं। कर्म तो करना ही है लेकिन बाबा ने हम सभी को ये विधि दिखाई सुनाई है, समझाई है कि बच्चे तुम्हें कैसे कर्म करना है। तो कर्म कैसे करना है कि अपने को विशेष आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली और कराने वाली हूँ। ये अभ्यास हमारे प्यारे बाबा ने, आप देखेंगे बाबा के अनुभव में भी हम सुनते हैं कि बाबा जो भी कर्म करते थे तो कर्म बाबा ने कैसे किया। बाबा हमेशा कहते थे कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर रही करा रही हूँ। कभी बाबा ने ये नहीं किया कि मैं कर रहा हूँ। हमेशा बाबा का क्या रहता था, मैं ये शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ। आज हम सभी देखते हैं, हमारी दादियाँ भी थी, दादियों ने भी जो भी किया, कभी दादियों के दिल में ये नहीं आता था कि मैं करती हूँ, कभी नहीं था। दादी हमेशा क्या कहती थी, बाबा करा रहा है और दादी इस शरीर के द्वारा कर रही है। तो कर्म करने वाले हम हैं लेकिन हम कर रहे हैं। तो कोई भी कार्य था वो साक्षी होकर के करते और करण करावन हार बाबा हमसे करा रहा है। हमेशा उनकी बुद्धि में क्या था, बाबा करा रहा है। तो जो कार्य बाबा कराएगा हा? तो वो कार्य कैसा होगा, अच्छा भी होगा, श्रेष्ठ भी होगा और सफल भी होगा। जब कार्य करने में मैंपन आता है, और जब मैंपन आएगा तो मैंपन आने में क्या होता है, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, ऊंचाई नीचाई होती है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो मैं में क्या होता है, अभिमान आता है। और जहां अभिमान आता है वहां उसके पीछे और सब आने लगते हैं। जहां मैंपन आया तो वहां पीछे और अनेक प्रकार की समस्या आएंगी, परिस्थिति आएंगी, ऊंचाई नीचाई आएंगी। और जहां मैंपन खत्म हो गया, मैं तो करने वाली हूं और कराने वाला कौन है, बाबा है। अगर बाबा ने हम सबको निमित्त ना बनाया होता तो हम कार्य कर सकते थे। तो बाबा कराता है और हम करने वाले हैं। हम सभी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है और करावन हार हमारा बाबा है। तो बाबा हमसे जो कार्य कराएगा वो कार्य क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। और उस कार्य, श्रेष्ठ कार्य से हमारे जीवन में क्या होगी, सफलता प्राप्त होगी। आज हम देखें हमारे बाबा और दादियां इतने सफल कैसे हुए है? हमेशा उनके अंदर यही था कि बाबा कराता है। दादी भी हमेशा देखते थे बाबा कराता है, जानकी दादी बाबा कराता है, दादी बड़ी कहती थी बाबा कराता है, बाबा ने ये कार्य किया है। तो जब बाबा कराता है तो बाबा कौन सा कार्य कराएगा, श्रेष्ठ कार्य कराएगा। मुझे दादी की एक बात याद आती है, बड़ी दादी से जब अब्दुल कलाम जी आए थे और दादी से मिलने के लिए गए थे तो दादी जी के पास उन्होंने दादी जी से एक प्रश्न पूछा था कि दादी जी आप जब भी किसी से मिलते हैं या किसी की कोई समस्या होती है, कोई परिस्थिति होती है, तो आप उसका राइट उत्तर कैसे देते हैं? तो दादी जी ने बड़े प्यार से उनको कहा कि देखो, जब मेरे पास कोई आता है और मेरे से कोई प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं ये प्रश्न है, तो मैं सुनती हूँ और सुनते हुए मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा अब इस आत्मा का ये प्रश्न है, आप ही इसका उत्तर दो मेरे द्वारा। तो बाबा जो उत्तर देगा तो कौन सा उत्तर देगा है? बाबा जो उत्तर देगा वो कौन सा देगा? राइट उत्तर देगा। तो दादी ने अपने को क्या बना लिया? न्यारा बना दिया, साक्षियों को, बाबा को सौंप दिया, बाबा अभी तुम उत्तर दो। तो जब बाबा और दादी के द्वारा जो उत्तर देता था, तो वो उत्तर पाकर के वो आत्मा क्या हो जाती थी? संतुष्ट हो जाती थी। तो संतुष्टता की विधि क्या रही? कि बाबा ने उत्तर दिया, दादी ने बाबा को कहा और बाबा ने दादी के द्वारा उत्तर दिया, तो वो आत्मा क्या होती थी? संतुष्ट। दादी हमेशा अपने को साक्षी, कभी भी दादी कोई भी कार्य में ऐसे नहीं कहती थी कि मैं करती हूं या मेरे द्वारा बाबा करा रहा है, हमेशा कहती थी बाबा करा। और कभी भी दादी ये नहीं कहती थी कि मैं करती हूँ। दादी कहती कोई भी बात होती थी, दादी हमेशा कहते थे दादी जी का ये विचार है, दादी का ये विचार है, मेरा ये विचार है नहीं, लेकिन दादी का ये विचार है। तो दादी अपने को हमेशा न्यारा समझ करके, सामने साक्षी दृष्टा होकर के उसका उत्तर देती थी, तो उस उत्तर से वो आत्मा सदा संतुष्ट हो जाती थी। और जो भी दादी ने कार्य किया, आज इतने बड़े यज्ञ की स्थापना की, तो इस यज्ञ की स्थापना में भी दादी ने हमेशा साक्षी होकर के पाठ बजाया, वो हम सबने भी देखा। और बाबा भी, ब्रह्मा बाबा का भी यही था, बाबा भी क्या करते थे, बाबा तो खुद मालिक था, लेकिन मालिक होकर के भी बाबा ने कभी ये नहीं कहा मैं करता हूँ। बाबा हमेशा कहते थे कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है, ये बाबा का यज्ञ है और बाबा के यज्ञ को बाबा ही चला रहा है, बाबा ही करा रहा है, मेरे द्वारा करा रहा है। अपने को न्यारा किया और करावन हार बाबा करा रहा है। वो भी हम देखते हैं, सुनते हैं कि देखो, जब बाबा के यज्ञ के अंदर बेगरी पार्ट आया, तो बेगरी पार्ट में भी क्या हुआ कि जब यज्ञ में एक पैसा भी नहीं रहा, किसी के पास एक भी नहीं था, बोली दादी बाबा के पास गई, बाबा आज आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, तो क्या होगा? तो बाबा ऐसे बैठा है, जैसे विष्णु बैठा होता है ना चेत सैया के ऊपर, तो ऐसे बाबा ऐसे बैठा है, और बोली दादी पूछ रही है, बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, साक्षी होके, अच्छा बच्ची, बुद्धि में क्या था? बाबा का यज्ञ है, करण करावनार बाबा है, वो चलाएगा, मेरा यज्ञ थोड़ी है। आज हमारे पास कोई भी परिस्थिति आती है, हाँ ये परिस्थिति आई, ऐसी परिस्थिति आई, अब क्या होगा, कैसे करे, कैसे चले, हाँ कितने संकल्प चल जाते हैं, लेकिन अगर बाबा को सौंप दे, बाबा ऐसे सौंप करके बैठा हुआ है, हाँ न्यारा हो करके, क्योंकि बाबा का है ना, कराने वाला बाबा है, बाबा कराएगा, और सचमुच बाबा ने कराया, कहाँ से मनी ऑर्डर आ गया, पैसा आया, आटा आया, भोजन आया, सब्जी आई, सब खाना बना, सब यज्ञवत्सों ने खाया। आप सोच सकते हैं उस जिस यज्ञ में पैसा ही नहीं था, और आज वो यज्ञ कहाँ पहुंच गया, किससे? बाबा हमेशा ये कहता था, बाबा करण करावन हार बाबा है, और बाबा करा रहा है, हमें करना है, स्वयं को हमेशा साक्षी बनाए। तो साक्षीपन की स्थिति में हम जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। और जहां हम ये बुद्धि में लाते हैं कि मैं ये कर्म करता हूं, मैं ये करूंगी, तो वहां ही क्या आती है, सब ऊंचाई नीचे, मैंने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया, सब बातें आती है। बाबा का कार्य बाबा अपने आप हम सबसे करा रहा है, उसमें साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने से, साक्षी रहने से हम स्वयं हल्के रहेंगे। और जब हम स्वयं हल्के रहेंगे है, तो हमारा बुद्धि योग कौन रहेगा? बाबा है, बाबा करा रहा है, बाबा ने कराया है और बाबा कराएगा। तो ये विश्वास होगा ना, तो हमारे बुद्धि के अंदर बाबा रहेगा तो योग लगाना पड़ेगा, योग लगा ही पड़ा है। जो मेहनत करते हैं हम, योग करें, बाबा को याद करें। कई बार मैं पूछती हूं, हमको संकल्प चाहिए, योग क्या है? हमेशा बाबा की स्मृति रहना ही हमारा योग है, इसलिए तो हम कर्म योग कहते हैं ना। और कर्म योग स्मृति कैसे रहेगी? स्मृति रहने के लिए बाबा के हम सेवाधारी बच्चे हैं, अपने को सेवाधारी समझना, बाबा के हम सेवाधारी बच्चे हैं, बाबा को हमारे से जो सेवा करानी है वो कराए, कार्य उसका है, सेवा उसकी है, हम भी उसके हैं, वो हमारे द्वारा कराएगा और हम करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं तो क्या होगा, उतने हल्के रहेंगे। जैसे देखो, लौकिक में भी जो सेठ होता है उसको चिंता होती है, नौकर को चिंता होती है, नौकर को टेंशन होता है कभी कोई चीज का, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो तो काम किया जाता है, नौकर है, ड्यूटी मिल गई, भाई ये काम करना है, वो निश्चिंत होकर करता है। और जो सेठ होता है उसको चिंता होती है, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये करना है, उतना करना है, इतना करना है, चिंता उसको होती है। और जो करने वाला होता है उसको सिर्फ क्या रहता है, भाई मेरे को ये ड्यूटी मिली है, ये कार्य मिला है, तो मुझे करना है। तो वो करने में करेगा तो सहज करेगा, हल्का होकर करेगा। ऐसे ही बाबा ने भी हम बच्चों को क्या कहा, बच्चे मैं तुम्हारा सेठ हूं हा? और तुम मेरे क्या हो, सेवाधारी बच्चे हो। तो बाबा के हम सेवाधारी हैं, हम सेवाधारी हो करके चलते हैं, तो सेवाधारी जो होगा वो साक्षी रहेगा। मुझे सेवा करनी, बाबा की सेवा है, कराने वाला वो है, मुझे सिर्फ करना है। और करना है वो भी बाबा ने बताया, हमें क्यों करना है, करना इसलिए है कि इस करने से मेरा बहुत बड़ा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। हमारा भाग्य बनाने के लिए भगवान ने ये विधि रखी है। और जहां हमारा भाग्य बनेगा है, तो भाग्य बनने में क्या होता है, कहते हैं जहां प्राप्ति होती है तो इंसान क्या करता है, सहज ही पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। अगर प्राप्ति नहीं होगी तो करेगा कुछ? अगर कमाई नहीं होगी तो इंसान कुछ करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। और जहां कमाई होती है वहां उसको क्या होता है, ना नींद आती है, ना थकावट होती है, ना कोई परेशानी होती है, वो सहज ही करता है। तो इसी प्रकार हमको भी अगर प्राप्ति है तो फिर क्या होगा, प्राप्ति को बुद्धि में रखकर जो भी हम कार्य करेंगे वो कार्य हम सहज करेंगे, हल्के होकर के करेंगे। बाबा कहता बच्चे उड़ो, फरिश्ता बनो, तो फरिश्ता कैसे बनेंगे? फरिश्ता बनने के लिए अपने को हल्का रखना होगा, और अपने को हल्का रखने के लिए हमें साक्षी रहना होगा। जितना साक्षी होकर के बाबा करण करावन हार हम आत्माओं से करा रहा है और मुझे ये करना है, तो जो भी हम कार्य करेंगे वो कार्य भी सहज हो जाएगा और उस कार्य का भी हमको बोझ नहीं लगेगा। देखो कई बार क्या होता है, जब उमंग उत्साह होता है तो उस कार्य को हम सहज कर सकते हैं, उसमें कभी थकावट नहीं होती है। और जहां हमको उमंग उत्साह नहीं होता है अर्थात प्राप्ति नहीं होती है तो जो भी कार्य करते हो उसमें क्या लगती है, मेहनत लगती है, और उस मेहनत के कारण ही फिर क्या होती है, थकावट होती है, और थकावट के कारण फिर जो भी करते हैं तो कार्य का बोझ जाता है, और जो बोझ वाला व्यक्ति क्या करेगा है? बोझ वाला जो कार्य करेगा वो कैसे करेगा, देखते ना, जो बोझ जिसके सिर पर होता है वो कैसे चलता है। कई बार बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारा बोझ क्या करो, मुझे दे दो है? बाबा हमारे बोझ की टोकरी उठाने के लिए तैयार है। बाबा कहता है ना, मैं तुम्हारा क्या हूं, ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। है सर्वेंट बाबा, है सर्वेंट कहेंगे बाबा को है? नहीं, बाबा कहता है मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। बाबा हमारा सेवाधारी है, क्योंकि हमारा बाप भी है ना, हम बाप बाबा को क्या कहते हैं, मात पिता है। मात पिता हमेशा बच्चों के क्या होते हैं, सेवाधारी होते हैं। तो शिव बाबा भी हमारा मात पिता है, हम बच्चों की सेवा करता है। हम भले नहीं कहते हैं बाबा सर्वेंट के नाम को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम अपनी हुज्जत से बाबा को कहते, बाबा मेरा ये कार्य करो ना, कहते कि नहीं कहते, कहते ना बाबा ये करो, बाबा ये करो। तो किसको कहा जाता है, किसको हुज्जत से कहा जाता है कि ये करो है? तो बाबा हमारा सर्वेंट सेवाधारी, हम बच्चों की सेवा के लिए बाबा आया है, इसलिए हम बाबा को बोलते हैं और बाबा करता है। तो हम भी बाबा करता है और बाबा हमारे द्वारा कराता है, तो हमारे द्वारा बाबा करा रहा है, हम बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं। तो अपने को जब हम सेवाधारी समझते हैं तो सेवा में क्या होता है, सेवा में कभी बोझ नहीं होता है। जो सेवाधारी होगा वो साक्षी होकर के सेवा करेगा, ये सेवा है, मुझे ये सेवा करनी है, न्यारा होकर सेवा करना है, और सेवा करते हुए भी उसको कभी भी भारीपन महसूस नहीं होगा, बोझ महसूस नहीं होगा, हमेशा हल्का रह करके करेगा। तो बाबा मेरे द्वारा ये कार्य करा रहा है और हम कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो इससे मेरा भाग्य बन रहा है। तो बाबा सेवा नहीं करा रहा है लेकिन हमारा भाग्य बना रहा है। हमारा भाग्य बनाने के लिए भगवान आया है, है? तो भाग्य बना रहा है, तो भाग्य कैसे बनाएगा, भाग्य बनने की विधि क्या है? भाग्य बनने की विधि हमारे द्वारा बाबा कराता है और हम करते, तो बाबा करा रहा है तो हम कितने न्यारे हो गए। सिर्फ हम तो बाबा के साधन हैं और बाबा करा रहा है, तो जब अपने को साधन समझते हैं और बाबा करा रहा है तो बहुत हल्के हो जाते हैं। आज हमारी दादियां क्यों हल्की रही है? कभी भी आप जाएंगे दादियों के पास, दीदियों के पास, सदा हल्की होती थी, मस्त होती, जब भी दादियों के पास जाओ ऐसे मस्ती में बात करती थी। कभी भी दादियों का आपने देखा होगा, कभी भी मूड आउट नहीं देखा होगा या चेहरा उदास नहीं देखा होगा, देखा कभी नहीं, जिन्होंने दादियों को देखा कभी उदास चेहरा देखा, सदैव क्या होता था, फ्रेश। सुबह जाओ तो भी दादियां फ्रेश, रात्रि को 10 बजे जाओ तो भी दादियां क्या होती थी, फ्रेश दिखाई देती थी। जो ऊर्जा सुबह में होती थी वही ऊर्जा रात्रि को भी होती थी, कैसे? आज संसार में जाकर के देखो, जो इंसान सुबह में ऑफिस जाता है रात्रि को टायर होके आ जाता है, हैं? टायर हो गए, बहुत काम किया, बहुत काम किया, कर के आए, रात को टायर हो गए, थक गए, हैं? हमारी दादी ने कभी नहीं कहा हम थक गए, बाबा ने कभी नहीं कहा हमने थक गए, हैं? जो ऊर्जा सुबह में होती थी, आप क्लास के समय देखो दादी पर प्रकाश, हंसती थी, नाचती थी, कूदती थी, वही रात्रि को भी वही देखो, वही पोजीशन। कल ही मैं रतनमणि दादी के पास गई, दादी ऐसे हंस हंस के बात कर रही प्यार से, मैं बोली दादी मेरे को जानती हो, बोला तेरा नाम तो भूल गई हूं पर जानती हूं, ऐसे हंस हंस के प्यार से बात कर रही है, भूल गए, जैसे एकदम न्यारा अपने को बना दिया। कैसे बनी वो स्थिति, वो प्रैक्टिस की, एकदम न्यारे बाबा करा रहा है। तो साक्षीपन से हमारी स्थिति बन, जितना हम अपने को न्यारा बनाएंगे, साक्षी बनाएंगे, उतना बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि बोझ बाबा को दे दिया ना। और जब बाबा करा रहा है तो जो भी कार्य होता सहज होता है, तो हम हल्के रहेंगे। तो हल्के होकर के हम जितना रहेंगे, जितना अपने को हल्का बनाएंगे, क्योंकि बाबा भी कहता है बच्चे अभी फरिश्ता बन करके उड़ो, तो फरिश्ता कैसे उड़ेगा है? फरिश्ता हल्का होगा उड़ेगा, और अगर हम फरिश्ता नहीं बने तो कैसे उड़ेंगे? आज मेरे को ये काम करना है, आज मेरे को ये ड्यूटी करनी है, आज मेरे को वो ड्यूटी करनी है, आज मेरे को ये सेवा है, आज मेरे को वो सेवा है, आज मेरा ये प्रोग्राम है, आज मेरा वो प्रोग्राम करके आते हम टायर हो गए। हमारी दादियां कभी टायर होती थी, कभी कभी आप फंक्शनों में देखो, सारे दिन आज यहां जाना है, आज वहां जाना है, अभी वहां जाना है, अभी वहां जाना है, अभी वहां जाना है, देखो हंसती हंसती, क्यों? कार्य करती थी साक्षी होकर, कार्य करती थी बाबा को साथी रखकर। मेरा साथी कौन है? बाबा है। मेरे साथ कौन है? बाबा है, हैं? और बाबा करा रहा है। तो जब बाबा करा रहा है तो हम सब देव क्या रहेंगे? बहुत हल्के हो जाएंगे। तो अब हम सबको वही स्टेज चाहिए, और इस स्टेज से ही हम जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आज एक गुना करेंगे, बाद में अनेक गुना करेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे आज एक सेंटर संभालते हो, ऐसा समय आएगा जो 10-10, 15-15, 20-20 सेंटर संभालेंगे, कितना कारोबार बढ़ जाएगा। हाँ, तो वो बढ़ेगा, कारोबार तो करना ही पड़ेगा, कारोबार तो छोड़ना नहीं पड़ेगा ना, लेकिन उसको करते हुए हमें बुद्धि में क्या है? बाबा करा रहा है, तो बाबा शक्ति भर रहा है ना। बाबा करा रहा है तो कराने की शक्ति कौन भरेगा? बाबा भरेगा ना। और जब बाबा की शक्ति हमारे में आएगी तो कार्य कैसा होगा है? वो कार्य कैसा होगा? कितना फोर्स से कार्य होगा? देखो, जब हम समझते हैं हम ये कार्य कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो जब काम करते हैं तो भारीपन आता है, और जब सेवा करते हैं तो क्या होता है? हल्कापन होता है। सभी ने आपने अनुभव किया होगा, हमारी माताएं भी अनुभव करती, भाई लोग भी अनुभव करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को टायर हो जाते हैं, काम पे गए थे, ड्यूटी पर गए थे, थक गए, और जब सेवा होती है 24 घंटे सेवा कराओ तो भी थकते नहीं है, क्यों? बुद्धि के अंदर रहता है बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा है। एक बार बाबा ने हंसते हंसते माताओं को बोला था कि माताएं हैं ना जो घर में खाना बनाती हैं, 10 मेहमान आ जाएंगे तो अरे रोटी बना बना के थक गए, हाँ इतनी रोटी बनानी पड़ी, थक गए, माताएं थक जाए, हाँ इतनी रोटी बनाई थक गए, और मधुबन में 3 घंटे रोटियां बनाती हैं, हैं तो भी थकती नहीं है, क्यों? क्यों? क्योंकि वहां काम कर रहे थे, वहां सेवा कर रहे हैं, साक्षी बाबा के घर की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा में थकावट नहीं है, काम के अंदर थकावट है। तो सेवा समझ करके करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, न्यारे होकर के करेंगे, सेवा समझेंगे तो न्यारे होंगे। सेवा किसकी है? ये यज्ञ किसका है? सेवा किसने दी है? कराने वाला कौन है? तो ऑटोमेटिक याद है बाबा की, तो बाबा भी याद रहेगा। और सेवा करने से, जितना हम न्यारे होकर के सेवा करते हैं उतना हम हल्के बनते जाते हैं, और जितना हल्के बनेंगे उतना ही उड़ेंगे। तो बाबा ने कहा ना सेवा छूटेगी, ना बाबा की याद छूटेगी, ये तो हमारे साथ क्या रहेगी, अंत तक रहेगी। कई बार हम हंसते हैं, कई बार हम आपस में, कि देखो दुनिया के अंदर संसार में जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो रिटायरमेंट मिलती है उनको, भाई 60 साल के हो गए अभी रिटायर करो। और हमारे यहाँ अपने यहाँ क्या होता है, 60 साल का रिटायरमेंट होते ये क्या होता है, हैं? 60 साल में तो और कार बढ़ जाता है, दादी दीदियां बन गए तो और कारोबार बढ़ता है, ये संभालो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, रिटायरमेंट नहीं मिलती है। कभी मिलती है रिटायरमेंट, है यहां रिटायरमेंट है? जितना अनुभवी बनते जाते हैं, सेवा करते जाते हैं, उतना उतना सेवा और मिलती जाती है, है? तो मिलती जाती है, तो जो सेवा करेगा तो सेवा के साथ मेवा भी खाता है ना बाबा, शक्ति भरता रहता है ना, सेवा से मेवा, मेवा कौन सी है, शक्ति है, खुशी मेवा है, शक्ति मेवा है, ये ताकत मेवा है हमारी, जो बाबा हम बच्चों के अंदर भरता जाता है और हम बच्चे प्रैक्टिकल में करते जाते हैं। तो कोई भी कार्य को हम करें तो साक्षी होकर बाबा करा रहा है, कराने वाला बाबा है, हम सब करने वाले हैं, तो करना भी सहज होगा, स्थिति भी सहज रहेगी और उसमें समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। अब बाबा हम बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए विशेष इशारा दे रहा है कि बच्चे अभी संपूर्ण बनो, तो संपूर्ण बनने में क्या ही है, साक्षी होकर काम कर, ना काम रहेगा ना सेवा रहेगी, है? लेकिन सब करते हुए भी हम हल्के होकर के करते चलेंगे तभी हम उड़ सकेंगे, और उड़ सकेंगे तो औरों को भी क्या करेंगे, उड़ा सकेंगे। जब खुद ही नहीं उड़ेंगे तो दूसरों को कैसे उड़ाएंगे, उड़ा सकेंगे है? नहीं उड़ा सकेंगे ना, तो खुद भी उड़ना है और साथ साथ औरों को भी उड़ाना है। तो उड़ाएंगे कैसे, जब हम न्यारे होकर के कार्य करें, कार्य में फंसना नहीं है, जब फंसते हैं ना तभी परिस्थिति आती है, तभी बोझ लगता है, तभी परेशानी आती है। देखो बाबा ने सेवा भी दी है, ये तन भी दिया है, मन भी दिया है, सेवा भी दी है, इतना बड़ा परिवार भी दिया है, परिवार में भी हम हल्के कैसे रहेंगे, क्योंकि परिवार के अंदर भी कई प्रकार की ऊंचाई नीचाई आती है, है? तो ये मेरा परिवार है, तो बेहद का परिवार है। बाबा ने कहा ना बच्चे ये तुम्हारा बेहद का ईश्वरीय परिवार है, तो ईश्वरीय परिवार है, और ईश्वरीय परिवार होने के नाते परिवार में भी हम सबके साथ में क्या रहना है, न्यारे हो करके कर्म करना है। लौकिक में तो फिर भी मेरा 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 आता है, वहां न्यारापन नहीं आता, मेरापन आता है तब मरते। और बाबा ने हम सबको कहा कि बाबा के बच्चे हैं, अलौकिक परिवार ईश्वरीय परिवार में हमारा आपस में कौन सा संबंध है, भाई बहन का संबंध है, ईश्वरीय परिवार है, हम बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरीय बच्चे हैं, है? तो जब ईश्वरीय बच्चे हैं तो वो स्मृति रहती है, बाबा के बच्चे हम सब भाई बहन हैं, ये हमारा अलौकिक परिवार है। तो जब अलौकिक परिवार है उसमें ना तेरा है ना मेरा है, लौकिक में तो फिर भी स्वार्थ आता है, तो स्वार्थ के कारण वो साक्षी दृष्टा नहीं रह सकते। यहां क्या स्वार्थ है, है? यहां तो कोई स्वार्थ नहीं है, ना तेरा है ना मेरा है, ना मेरी कोई जायदाद है ना मेरा कुछ है, लेकिन सब बाबा का है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का घर है, बाबा की सेवा है, बाबा का परिवार है, बाबा चला रहा है, हम भी बाबा के हैं, हमें भी चला रहा है, परिवार को भी चला रहा है। तो जब बाबा चला रहा है तो हमारे ऊपर क्या बोझ आएगा, बोझ तब आता है जब हम अपने पन में आते हैं, और जहां लौकिक में देखो, जब लौकिकपन आता है तो लौकिक में स्वार्थ आता है, और जब स्वार्थ आता है तो उसमें तेरा मेरा ये वो सब परिस्थितियां आती है, स्वार्थ सब ले आता है। और जब स्वार्थ नहीं है, क्योंकि दुनिया में निस्वार्थ सेवा तो है ही नहीं, हमारे पास तो निस्वार्थ है, बाबा हमारा है, बाबा ने हमें सेवा दी है, ये बाबा की हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवाधारी हैं, तो हम सदा क्या रहेंगे, हल्के रहेंगे। अपने को हल्का बनाना है, साक्षी बनाना है, हल्के होकर के कार्य करना है, तो हम जो भी कार्य करेंगे वो कार्य हमारा सहज होगा, और सहज होगा तो हमारी स्थिति भी सहज रहेगी, हम सहज योगी बने। हमारा योग कौन सा है? सहज योग है, सुनाते तो है ना, हमारा सहज योग है, ज्ञान योग है, सहज राज योग है। बाबा हमें इस योग से राजाओं का राजा बनाते हैं, लेकिन अभी हम कौन से राजा हैं? राजा हमें अब बनना है, राजयोगी हैं, तो राजयोगी यहां राजा बनना है, यहां अर्थात हमें अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनना है। जब कर्म इंद्रियों का राजा बनेंगे तब हम वहां जाकर के वो राजाई प्राप्त, यहां ही अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा तो प्रजा पर क्या कंट्रोल कर सकेंगे, कर सकेंगे? और राजा के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, जो राजा राज्य को चलाने के लिए सुचारू रूप से राज्य चलाए, राजा ही श्रेष्ठ रीति से चलाए, अपनी प्रजा को संतुष्ट रखे, उसके लिए राजा के अंदर एक विशेष गुण होता है, साक्षी दृष्टा का। वो साक्षी दृष्टा होकर के सबको एक समान जब चलाता है तब राज्य को सुचारू रूप से चला सकता है। अगर राजा के अंदर साक्षीपन नहीं होता है, तेरा मेरा ये वो वैसा ऐसा, तो वो कभी भी अपने राज्य को संतुष्ट नहीं करता। सब मेरे हैं, और जब सब मेरे को समझेगा तभी राज्य को सुचारू रूप से चला सकेगा। तो वही संस्कार हम आत्माओं को कहां भरने हैं? यहां भरने हैं। तो हम यहां पर जब हम स्वयं के राजा बनेंगे तभी हम वो राज्य प्राप्त कर सकेंगे। तो राजा बनने के लिए भी हमें अपने अंदर साक्षी दृष्टा का विशेष गुण धारण करना है। कोई भी कार्य करना है न्यारे और प्यारे होकर के करना है। जितना न्यारे और प्यारे होकर के हम कार्य करते हैं वो कार्य भी हमारा सुचारू रूप से चलता है और हमारी स्थिति भी बहुत सहज रहती है। और जहां न्यारापन नहीं होता है तो क्या होता है फिर? तो न्यारापन नहीं होता, जैसे कमल देखो कीचड़ में रहते न्यारा रहता है। बाबा ने भी हमें बच्चों को कहा, कमल समान स्थिति तुम्हारी न्यारी और प्यारी रहे। जब न्यारी प्यारी स्थिति रहेगी तभी हम सबके न्यारे और प्यारे बन सकेंगे, और न्यारे प्यारे जब यहां बनेंगे तभी सत्युगी महाराजा महारानी बन सकते हैं। तो विशेष अपने जीवन में अपने जीवन को श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए हमें इस गुण को विशेष धारण करना है। जैसे हमारे बाबा ने साक्षी होकर के हर कार्य किया, हम सबको सिखाया, हमारी दादियों ने भी वही कार्य किया, एकदम साक्षी होकर सुचारू रूप से इतना बड़ा बेहद का कार्य, बेहद सेवा की और कार्य को सुचारू रूप से चलाया। वैसे हम भी अपने को साक्षी होकर के न्यारे होकर के हर कार्य को करेंगे उतना ही हम अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा गुण हमें ये जीवन में धारण करना है। ओम शांति।